जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामनि गौरात्वेशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सोमवार के श्री चैतन्य चरितमृत के सत्संग में श्री श्री राधा राधिका रमन श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान पंजाबी बाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत। कविराज गोस्वामी का ये मधुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पुंज है, उसका मध्य लीला वो समय है चैतन्य महाप्रभु का जब वो संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी से 4 साल तक दक्षिण भारत में भ्रमण किया, फिर वृंदावन आदि आए, तो भ्रमण वाला समय को मध्य काल कहते हैं, मध्य लीला कहते हैं। उसमें 11वां अध्याय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं अभी, इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करके जगन्नाथपुरी में आए हैं और महाप्रभु से मिलने के लिए बंगाल से उनके भक्त हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा के समय तक आके रहते थे। इससे एक बात बड़ा अद्भुत संकेत मिलता है कि लोगों के पास समय था, 3-4 महीने समय था, जाके महाप्रभु के संग में रहते थे, कथा कीर्तन हरि भजन करते थे, वो घर भी चलाते थे परिवार भी चलाते थे, लेकिन ऐसे हमारी तरह पागल नहीं कि 24 घंटे ही काम में लगे रहते थे, ऐसा नहीं था, समय वो निकाल सकते थे। और चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौमा भट्टाचार्य जो बहुत बड़ा विद्वान था, बृहस्पति का अवतार है, और जो जगन्नाथपुरी में रहते थे, उन्होंने प्रार्थना की एक बार चैतन्य महाप्रभु को कि एक आपको एक निवेदन रखता हूँ, आप स्वीकार करें ना करें आपकी मर्जी, तो भाई बोलो जो तो कुछ बोलना है तुम्हारे को, आप तो बड़े हो। बोला राजा प्रताप रुद्र आपका दर्शन करना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु कान बंद कर दिए। बोला राजा विषयी का दर्शन नहीं करना, जो विषयी लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए, और सन्यासी को तो स्त्री लकड़ी की भी नहीं देखनी चाहिए, और दोबारा अगर आपने ऐसे कहा कि मिलने का तो हमको यहां नहीं देखो, हम जगन्नाथपुरी छोड़ के चले जाएंगे। वापस जाके सार्वभौम भट्टाचार्य ने बता दिया चैतन्य महाराज को कि आप निराश नहीं होइए, आपकी भक्ति रंग लाएगी जब स्नान यात्रा हो जाएगी, और रथ यात्रा से पहले जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करके और जगन्नाथ जो जो गुंडीचा बगीचा है उसमें थक जाएंगे, तब आप पंच अध्याय रास पंचोध्याय गाइएगा, आपका मनोकामना महाप्रभु के दर्शन की पूरी होगी। इस बीच में रामानंद राय जो गवर्नर थे उस वक्त में दक्षिण भारत में, वो वापस आ गए। महाप्रभु ने उनको कहा कि अब नौकरी छोड़ो, अब तो रिटायर हो जा, अब हमारे साथ रहो। तो उसने अपना वो पद छोड़ने के लिए राजा को जाके विनती की कि महाराज अब मेरी सेवा से आप मुझे निवृत्त कीजिए, महाप्रभु ने मुझे आदेश दिया है, मैं उनके संग में रहूंगा। तो महाराज प्रताप रुद्र ने कहा आपको हम पूरी पेंशन देते हैं, तनख्वाह के बराबर देंगे, आप इसकी चिंता मत करो, महाप्रभु की सेवा में जाना है तो जाओ। तो वहां महाप्रभु के तो वहां प्रताप रुद्र की महिमा, भक्तों की सेवा करने का चेतना महाप्रभु की, तो वहां रामानंद राय ने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया, तो उनके मन में महाप्रभु की सेवा का भाव आ गया। तो उस समय बहुत से भक्त बंगाल से आए हुए थे, उनके स्वागत करने के लिए चेतना महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जो उनके संग में सदा रहते थे सेक्रेटरी की जगह पे सचिव, और गोविंद जो उनका सेवक था उनको उनका स्वागत करके माला पहनाने के लिए भेजा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं कि ये सब गौरंगा महाप्रभु के जो पार्षद आए हैं दर्शन करने, इनका मुझे परिचय कराइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा मैं भी सबको नहीं जानता हूं, आप अपने महल के छत के ऊपर जाइए, और ये गोपीनाथ जो है आपको ऊपर से सबका परिचय कराएगा, ऊपर से आपको सबका परिचय कराएगा। तो वहां उन्होंने देखा पहले अद्वैत आचार्य को एक माला डाली, फिर दूसरी माला डाली, तो पूछा ये कौन है, बोला ये तो महाप्रभु के लिए भी पूजनीय अद्वैत आचार्य है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये महाप्रभु के सारे पार्षदों का परिचय प्रताप रुद्र छत के ऊपर सुन रहे थे। तो आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें कुछ नाम हैं जिनका परिचय महाराज प्रताप रुद्र को गोपीनाथ जी करा रहे थे। एक तो यह संकेत मिलता है कि राजाओं को इतना समय था कि भक्तों का परिचय पूछते थे, और हमको यहां आते हैं उनका परिचय पूछने का समय नहीं मिलता है। कितना ये बहुत बड़ा संकेत मिलता है कि परिचय पूछना चाहिए। तो इस श्लोक को पढ़ते हैं, ये आज का श्लोक है, मेरे को निकाल रहे हैं, इसमें कहां है, राघव पंडित इहां आचार्य नंदन, श्रीमन पंडित एई श्रीकांत नारायण, राघव पंडित इह आचार्य नंदन, श्रीमान पंडित इह श्रीकांत नारायण। दो पढ़ लीजिए, कोई भी दो पढ़ लो भाई। राघव पंडित इह आचार्य नंदन, श्रीमान पंडित या श्रीकांत नारायण, राघव पंडित आचार्य नंदन, श्रीमान पंडित श्रीकांत नारायण। एक देवी, राघव पंडित आचार्य, राघव
राघव पंडित आचार्य नंदन ज्ञान पंडित कांत नारायण।
तो इसका अर्थ है ये है राघव पंडित ऊपर से छत के ऊपर से महल की वो एक एक जिसको माला पहना रहे थे उसका परिचय दे रहे थे ये राघव पंडित है और ये रहे आचार्य नंदन नंदन आचार्य ये श्रीमान पंडित हैं तथा ये हैं श्रीकांत तथा नारायण। देखो ये नाम लेते हैं ना ये नाम इतने शक्तिशाली है हमारे अंतःकरण को शुद्ध करके पवित्र देंगे नामों में इतनी शक्ति है ये नाम अपने आप में पहले तो भगवान के नाम है सब और फिर ये भगवान के भक्तों के नाम है भगवान के भक्तों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखा हुआ है। एक बार बहुत इस्कान के आरंभक दिनों में जहां गिरिराज महाराज ने ज्वाइन किया था न्यूयॉर्क से आगे क्या नाम नाम अमेरिका के महानगर का किसी को याद आ रहा है न्यूयॉर्क से इस तरफ मेरी जबान पे जी का ना वो तो बिल्कुल उल्टा हो गया ये बिल्कुल 4 घंटे का ड्राइव है वहां से बॉस्टन बॉस्टन में केस हुआ कोर्ट में कोई भक्तों के ऊपर कोई बदमाशों ने किया तो एक बहुत सीधा साधा सरल भक्त था नंद कुमार उसको शाहिदी के लिए साक्षी के लिए बुलाया कटहरे में तो बेचारे तो बिल्कुल कुछ पता नहीं था उसको कहा बताओ कौन कौन था उस वक्त तो उसने कहा उधर गोपीनाथ था गोविंद देव था राधा रमन था जैसे जैसे भक्तों का नाम लिया उसके अंदर में ऐसा प्रकाश हुआ उसने ऐसा मंतव्य दिया केस जीत लिया केवल भक्तों के नाम लिए। ये गिरिराज महाराज कथा बताते हैं ये कि ये भक्तों के नाम ये स्थान के भक्तों के नाम केवल उसने वहां ना लिए कौन कौन था वहां तो उसने भक्त जो थे वो उनका नाम लिया जैसे नाम लिया उसके हृदय में ऐसा स्फूर्ति आ गई उसने ऐसा मंतव्य वहां दिया कि वो कैसे जीत लिए। तो ये नाम अपने आप में बहुत बड़े शक्तिशाली हैं नामों का इसलिए नाम हमेशा एक तो नाम इसमें नाम का बल है और उसके बाद किसी भक्त का ये नाम है तो उसकी अपनी भक्ति का बल भी उसमें है तो दो बल एक इसमें दो दो बल है तो इसलिए प्रभुपाद ने इसका बड़ा अद्भुत तात्पर्य लिखा है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी संगियों के सम्मान में निमन प्रकार का गीत लिखा है प्रार्थना कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो संगी हैं उनके लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या लिखा है गोरंगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं जो उनके संगी हैं उनको नित्य सिद्ध मानो। नित्य सिद्ध का मतलब है कि वो भौतिक जगत के नहीं है वो तो भगवान के धाम से पधारे हैं। और फिर क्या लिखा है ये याए ब्रंद जो ये मानता है ये मानना एक जानना होता है एक मानना होता है। जानना जो है बुद्धि का काम है बुद्धि से आदमी जानता है लेकिन मन से मानता है तो मन से मानना जो है ये ऊपर का स्तर है। ये जानना तो बहुत से लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान है लेकिन मानते कम है। जानना और बात है मानना और बात है। यहां लिखा है माने जो ऐसा मानता है कि गौरंग्या के पार्षद सारे सिद्ध गण हैं नित्य सिद्ध है से याए ब्रजेंद्र सुत पास वो तो सीधा कृष्ण के पास जाएगा। ब्रजेंद्र सुत ब्रजेंद्र ब्रज का इंद्र नंद बाबा जो ब्रज का राजा है उसका सुत मतलब श्री कृष्ण पास जाए मतलब कृष्ण के पास जाएगा इसका मतलब गोलोक धाम जाएगा। ये कितना बड़ा भारी सिद्धांत है गोलोक धाम जाने का अधिकार किसको है? जो वृंदावन के निज राग आत्मिक भक्तों का अनिवार्य बने वही जा सकता है ना, और कोई नहीं जा सकता है। गोलोक में जाने का एक ही साधन है कि भगवान के जो नित्य पार्षद हैं ब्रज के, वृंदावन के नित्य पार्षद हैं, उनका अनुगत होकर उनके पीछे चलेगा तो फिर वो गोलोक जाने का अधिकारी बनेगा। और यहां नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गोरंगे रसंगी गण, गोरंगा चेतना महाप्रभु के जो पार्षद हैं उनको जो नित्य सिद्ध केवल मानेगा वो भी कृष्ण के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या? जो चेतना महाप्रभु के पार्षद हैं वही कृष्ण के पार्षद है, क्योंकि कृष्ण और चेतना महाप्रभु में कोई अंतर है नहीं। लेकिन बहुत आश्चर्य है, और डबल आश्चर्य यह है कि चेतना महाप्रभु के पार्षद केवल कृष्ण के पार्षद नहीं है, राधा और कृष्ण दोनों के पार्षद है। महाप्रभु के पार्षदों में तो राधा के पार्षद हैं और कृष्ण दोनों के पार्षद हैं। उनको मानने से वहां कैसे चले जाएंगे? ये बहुत बड़ा भारी सवाल। जैसे भगवत गीता में लिखा है जो कृष्ण कहते हैं जो मेरे को कुछ करना नहीं है संसार में, लेकिन मैं सब कुछ करता रहता हूं, ऐसे जो मानता है वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या? और जैसे कि जन्म कर्म जो मैं देवम एवं योवेति तत्व त्यक्ता देवम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन, जो मेरे जन्म और क्रिया को जो मेरे जन्म और लीला को जानता है वो भी तत्व से जानता है वो मेरे धाम। इसका मतलब क्या? उनको जान कौन सकता है, उनको मान कौन सकता है? जो कम से कम तीनों गुणों से ऊपर है वो उनको पहचान सकता है, सब नहीं पहचान सकते। उनको जानने के लिए स्थिति इतनी ऊपर जा होनी चाहिए, तभी भगवान के पार्षद को जान सकते हैं। नहीं तो जानना और मानना तो बहुत दूर की बात है, जानना ही मुश्किल है। तो यहां श्री प्रभुपाद लिखते हैं बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे निज संगी तथा भक्त नित्य मुक्त हैं। ऊपर लिखा है नित्य सिद्ध और नीचे लिखा है नित्य मुक्त। वैसे भक्ति रसामृत में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं साधन जब करना है, साधन भक्ति करना है, तो गोरंगा महाप्रभु के पार्षद का अनुयायी बनना है। गोरंगा महाप्रभु के पार्षदों का अनुयायी बनना है साधन भक्ति के समय। यह बहुत बड़ा, जैसे रूप अनोगा हमको कहते हैं, रूप गोस्वामी चेतना महाप्रभु के पार्षद है, तो हमारा साधन वैसे ही करना है। वो संख्या पूर्वक नाम जपते तो हमको संख्या पूर्वक नाम जपना है और सिद्ध अवस्था में जब पहुंच जाए तो फिर भगवान श्री कृष्ण के जो वृंदावन के नित्य सिद्ध रागात्मिक भक्त हैं उनका अनुयायी बनना चाहिए। साधन काल में चेतना महाप्रभु के भक्तों का, सिद्ध काल में कृष्ण के भक्तों का अनुयायी बनना है। इसलिए कृष्ण के पास कैसे जाएगा जब वो स्वयं साधन से उठ के सिद्ध के स्तर के ऊपर पहुंचेगा, साधन के स्तर से सिद्ध के स्तर तक पहुंचेगा तभी कृष्ण के पास जाएगा। तो दोनों ये अब आगे कहते हैं श्री प्रभुपाद, इसका अर्थ ये हुआ कि वे इस भौतिक जगत के नहीं होते, क्योंकि वे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। निरंतर लगे रहने का मतलब है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो भगवान के साथ यहां आते हैं। निरंतर की परिभाषा ये है कि वो भगवान के धाम में भी लगे होते हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके संग भी भगवान के यहां साथ आ जाते हैं। तो हमारे को संसार में कर्मों के कारण आना पड़ता है, लेकिन भगवान के पार्षद भगवान की इच्छा से भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आते हैं। तो दोनों के आने में अंतर है। तो यहां नित्य शब्द नित्य सिद्ध शब्द है, तो एक नित्य सिद्ध होते हैं, एक साधना से सिद्ध होते हैं और एक कृपा से सिद्ध होते हैं। सिद्ध होने के तीन प्रकार बताए गए हैं। ये तो नित्य सिद्ध है जो भगवान के धाम से आते हैं, एक साधना करके सिद्ध बनते हैं जैसे हम सब साधना कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है सिद्ध बनना है, और जब सिद्ध बनेंगे और गोलोक धाम जाना है तो भगवान के पार्षदों का, नित्य सिद्ध भक्तों का, रागात्मिक भक्तों का अनुयायी बनना पड़ेगा। ये दामोदर लीला चल रही है, दामोदर महीना चल रहा है, इसी नवे अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक में ही श्रील प्रभुपाद जी जहाँ यशोदा मैया के सुंदर दही मंथन का वर्णन कर रहे हैं, उसके तात्पर्य में लिखते हैं, जो वात्सल्य के भक्त हैं उनको यहाँ यशोदा मैया के इस सेवा के कार्य को देखना चाहिए और उसके पीछे खड़े होके उसके अनुयायी बनना चाहिए, तो वात्सल्य रस की जो है पूर्ति करके राग मार्ग से भगवान के भक्ति कर सकता है, वहां विशेष रूप से ये लिखा है। तो हमारा भी उद्देश्य सिद्ध होना है, ऐसे नहीं कि हम सारी उम्र साधन करते रहेंगे, नहीं, साधन करके सिद्ध होना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साधन तक ही हमको अटके रहना है, यहां से बहुत ऊपर जाना है। इन सिद्धों की एक परिभाषा क्या है, इन इसी अध्याय में कैसी आती है, ऊपर से प्रताप रुद्र कहते हैं, और ये सब जगन्नाथपुरी में आए हैं, ये भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने जा ही नहीं रहे, ये तो सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे हैं। और इन्होंने न तो व्रत रखा तीर्थ में आके एक दिन, न तो बासर मुंडवाया, ऐसे ही प्रसाद खा रहे हैं, क्योंकि नित्य सिद्ध है वो, इन सब संसारी नियमों से परे हैं। उनका इतना राग आत्मिक चेतना महाप्रभु में स्नेह है कि वो तो सीधे महाप्रभु के पास जाते हैं, महाप्रभु कहते हैं प्रसाद खाओ, तो महाप्रभु की आज्ञा पालन करते हैं, बाद में जाके जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। ऐसे आप लोग भी अगर अपने आप को देखो तो असल में सिद्ध हो गए हो लगता है, क्योंकि वैसे वृंदावन कभी भी जाना है, पुराने जितने महाप्रभु के अनुयायी आते थे वृंदावन में, पहले मथुरा में भूतेश्वर का दर्शन करके आज्ञा लेते थे, क्योंकि वो क्षेत्रपाल है कि हमको, अब जैसे हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो पहले लिंगराज वो क्षेत्र राज है उसका दर्शन करके आज्ञा लेके फिर जाते हैं। तो पहले सब जितने गौड़िया वैष्णव आया करते थे, पहले भूतेश्वर का दर्शन करते थे, फिर विश्राम घाट पे स्नान करते थे, उसके बाद रात का एक व्रत रखे से कुछ करके फिर जाके वृंदावन का दर्शन करते थे। लेकिन हम इतने सिद्ध हो गए कि सीधे वृंदावन जाते हैं कोई नियम में हम पालन नहीं करते। असल में ये क्या है कि जैसे भगवान के दर्शन करने का नियम है कि पहले चरणों को देखना चाहिए, चरणों को अच्छी तरह से देखे, तुलसी लगी हुई है, चंदन लगा हुआ है, उसको देखे, भले मानसिक रूप से उसका चिंतन करे, फिर ऊपर जाके भगवान के कौन सा फूलों का पांव में गजरा पहना रखा है, क्या पहना रखा है, कि चांदी की क्या कहते हैं उसको पायल पहनी हुई है, फिर ऊपर धोती के रंग को देखना चाहिए, कैसी ठाकुर जी ने धोती पहनी है, फिर कमर को देखना चाहिए, फिर वक्षस्थल को देखना चाहिए, लेकिन हम सीधे आके भगवान के मुख को देखते हैं, क्योंकि वो नियम, क्योंकि ये हमारा एक स्वभाव ऐसा हो गया है, वैसे प्रक्रिया वो है, लेकिन हम सीधा ऊपर देखते हैं, लेकिन ऊपर देखने के बाद भी फिर नीचे से देखने का अभ्यास जरूर करना पड़े। असल में जो माधुर्य रस के भक्त होते हैं और वात्सल्य रस के भक्त होते हैं वो भगवान के मुख को देखने में ही आनंद लेते हैं, और दास्य रस के भक्त भगवान के चरणों का ही ध्यान करते हैं। तो हम सब हैं जी भगवान के दास, तो चरणों का ध्यान करना हमारा धर्म है, लेकिन हमारे को सीधा मुख के ऊपर हम चले जाते हैं, ये असल में भाव ऐसे है। असल में बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी प्रभुपाद के, श्री प्रभुपाद के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संग में ऐसा सॉफ्टवेयर सबके दिल में डाला जाता है कि पहले से ही ऊपर ऊपर के स्तर के ऊपर चले जाते हैं, उनको नीचे देखने की जरूरत नहीं होती है, ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा फिट हो जाता है। और चाहे वो कुछ ज्यादा नहीं शास्त्र को पढ़ा हो, लेकिन कोई कुछ बोलेगा ये ठीक नहीं बोल रहा है, उसको पता लग जाएगा कि ये सही ठीक नहीं बोल रहा है, ये पता नहीं ऐसे, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, ये प्रभुपाद की कृपा ऐसी अद्भुत है, इसको कहते हैं ये कृपा है असल में, ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है असल में, कि हम भागवत मार्ग से साधन कर रहे हैं, भागवत मार्ग के साधन में ज्यादा नियमों का महत्व नहीं दिया जाता है, स्वतः अपने आप हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये नित्य सिद्ध होते हैं, एक साधन सिद्ध होते हैं, एक कृपा सिद्ध, वो बहुत कम होते हैं, वो कृपा सिद्ध बहुत कम होते हैं। उनको उनका तो नाम लिस्ट में, उनकी लिस्ट में हमारा होना इतना असंभव नहीं है, इसलिए साधना अच्छी तरह से करके सिद्ध होना चाहिए। जो भगवान की सेवा में 24 घंटे लगा रहता है, अब देखो प्रेजेंट टेंस में प्रभुपाद जी बोलते हैं, अभी तक बोला पास्ट टेंस में, अब बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में। जो भगवान की सेवा में 24 घंटे लगा रहता है और भगवान को कभी नहीं भूलता, वो नित्य सिद्ध कहलाता है, कहलाता है। कोई भी हो सकता है 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हो और भगवान को कभी नहीं भूले, तो वो नित्य सिद्ध कहलाता है। और फिर नित्य सिद्ध की पुष्टि के लिए श्रील रूप गोस्वामी का ये श्लोक बोलते हैं, नित्य सिद्ध के लिए दूसरा शब्द बोलते हैं नित्य मुक्त। इहा यस्य हरिर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, जो अपने आप को भगवान का सेवक मानता है, कर्मणा शरीर से, इंद्रियों से, मनसा मन से, गिरा वाणी से, ये तीनों से जो भगवान की सेवा करता है। ये यशोदा मैया का दामोदर अष्टक में आप देखते हैं ना, तीन काम कर रही है, शरीर से मंथन कर रही है, ये कर्मणा हो गया, मन से कृष्ण का चिंतन कर रही है, अभी उठेगा मक्खन तैयार करूंगी, इसको खिलाऊंगी, इतना मेरे हाथ का मक्खन आज खाएगा, किसी घर में चोरी करने नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इसमें प्रेम से मैंने रात को दही को जमाया है, अब मक्खन निकाल रही हो, मेरे चिंतन कर रही है। और वाणी से बाल चरितानि गायन्ति, और भगवान के बाल चरित्र गा रही है, तीनों काम कर रही है कि नहीं कर रही है, शरीर से सेवा कर रही है, मन से चिंतन कर रही है, वाणी से गा रही है, इसको कहते हैं भक्ति का सूत्र। ये भक्ति का सूत्र है, ये 11वां अध्याय भगवद गीता का आखिरी श्लोक है, मत कर्म किन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यसमामेति पांडव। पांच चीजें हैं इसमें, तीन करनी है, दो नहीं करनी है। तीन करनी है, क्या करना है, शरीर से इंद्रियों से काम मेरे लिए करो, मन से मेरे को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, और भक्ति का मतलब है दिल से प्रेम मुझसे करो, भक्ति मतलब प्रेम। तो शरीर से काम भी मेरे लिए करो, मन से मेरे को ही पाना जीवन का लक्ष्य बनाओ, और हृदय से मुझसे प्रेम करो, ये भक्ति का सूत्र है। संग वर्जित, कर्मियों का, ज्ञानियों का, योगियों का संग छोड़ दो, संसारियों का संग छोड़ दो। तो क्या गालियां दें उनको, निर्वैर सर्वभूते, जो किसी से वैर मत रखो, उन सबके लिए भी शुभकामनाएं रखो, लेकिन संग मत करो। तो दो नहीं करनी है, संग नहीं करना है, वैर नहीं करना है, और तीन करना है, यह भक्ति का सूत्र है। और यहां यह भक्ति का सूत्र बताया जाए, कर्म और सन्यासी को डंडा देते हैं, उसमें तीन डंडे होते हैं, कर्म से, वचन से, मन से भगवान की सेवा करेगा 24 घंटे। तो जब वो सन्यास एक बार दे रहे थे लोकनाथ महाराज एक भक्त को, तो उसको कहा तुम्हारे को मैं दे रहा हूं BMW, बॉडी माइंड वर्ड्स, अब चढ़ो इसके ऊपर दुनिया पूरी में घूमू, ये BMW गाड़ी है। ये सन्यासी की BMW है। हाँ, मन करो वचन से भगवान की सेवा में लगो। और फिर लिखा है निखलस्व निखलस्वप्य अवस्थासु, हर हर स्थिति में, सब सब स्थितियों में जीवन मुक्त स उच्यते, उसको जीवन मुक्त मानना चाहिए। शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में नाना प्रकार के तथा कथित भौतिक कार्य करते हुए भी मुक्त पुरुष कहलाता है। कार्य कोई भी करता है कोई बात नहीं, लेकिन है मुक्त पुरुष, क्योंकि उसका उदय। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्त सदैव यही सोचता रहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा किस तरह अच्छे से अच्छी तरह की जाए और किस तरह उनके नाम यश तथा लीलाओं का विश्व भर में प्रसार किया जाए। जो नित्य सिद्ध है उसके पास अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के यश का सारे संसार में प्रसार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। अब ये जो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये लिख रहे हैं अभी के लिए, गोरंगा के पार्षद के लिए लिखने नहीं रहे। आज भी जो भगवान की गुण नाम रूप लीला का प्रचार करने में लगा हुआ है अपनी क्षमता के अनुसार, वो भी नित्य मुक्त है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसा नहीं है नित्य मुक्त पहले थे और चले गए, अभी नहीं है। हर समय भगवान के पार्षद इस धरती के ऊपर रहते हैं, लेकिन उनको मानना और जानना और मानना बहुत मुश्किल होता है। अब हम प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं, गौरवाणी प्रचारणे। अब गौरवाणी प्रचारणे का मतलब गौरंगा का पार्षद है तब तो उसकी वाणी का प्रचार करेगा। 24 घंटे प्रभुपाद का और कोई काम नहीं था, केवल कृष्ण भावना का प्रचार ही करना, यही इसके अलावा कोई काम था प्रभुपाद जी का? तो फिर ये गौर पार्षद, ये सब गौर पार्षद है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के लिए क्या कहते हैं प्रणाम मंत्र में, गौर शक्ति स्वरूपाय। तो ये सब गौरंगा के पार्षद। यहां तक प्रभुपाद जी ने जब जयपिता का स्वामी महाराज की भारत की नागरिकता के लिए, वो हमारे नाथ जी देसाई के पिता जो उस वक्त में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको कहा चिट्ठी लिख के, तो उसमें लिखा ये चेतना महाप्रभु का पार्षद है, इसको आप कृपा करके नागरिकता दिलाइए, यह यहां रह के मायापुर में सेवा करेगा। ये प्रभुपाद के शब्द लिखित में शब्द पड़े। तो इसका मतलब है कि वो गौरंगा के पार्षद आज भी इस धरती के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये प्रभुपाद जी लिखे जो ये काम कर रहा है वो नित्य सिद्ध है, वो नित्य मुक्त है। तो आज भी कृष्ण भावना अमृत संघ के अंदर ऐसे महापुरुष हैं, नित्य सिद्ध है, जो ये कार्य कर रहे हैं, नहीं तो ये अपने आप नहीं चल सकता। ये भौतिक चीज, ये भौतिक संस्था नहीं है, ये आध्यात्मिक संस्था है। इसलिए इसको जानने और मानने के लिए हमको उस स्तर के ऊपर आना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं जान सकते उनको। हमारा स्तर जब ऊपर बढ़ेगा तो वो सब चीजें वो हमको दिखने में आ जाएंगे। तो यहां है ये सब। और फिर लिखा है इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नित्य सिद्ध करी माने, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व स्वयं विद्यमान थे, अतएव केवल उन्हीं के संगी मुक्त थे। देखो यह प्रभुपाद जी और स्पष्ट कर रहे हैं, उस वक्त मुक्त थे ऐसा नहीं है। बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर के तो कहते हैं जो कोई भी भगवान के नाम की मेहमान का प्रचार प्रसार करे श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर से कार्य करता है। दो बात, चैतन्य महाप्रभु की ओर से कार्य करता है, चैतन्य महाप्रभु की ओर से कार्य करता है, इसका मतलब यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारी आज्ञा तारोय देश, गुरु होय तारोय देश, ये है चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा। तो जो आज भी चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश के अंतर्गत, श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने इस्कान की स्थापना की, इस्कान का तो पहले स्थापन करने वाला श्री कृष्ण स्वयं है, तो ऐसे संकीर्तन आंदोलन का स्थापन करने वाला तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। जो उसके इस कार्य को प्रचार करता है, जो इस कार्य को प्रचार करता है चैतन्य महाप्रभु की ओर से कार्य करता है, वो नित्य सिद्ध है। वाह प्रभुपाद जी इतना उदारता के साथ कह रहे हैं, आज भी जो ये कार्य कर रहा है महाप्रभु का वो नित्य सिद्ध है। जो लोग भगवान की मेहमान का प्रचार करते हैं ऐसे भक्तों का हमें नित्य सिद्ध के रूप में सम्मान करना चाहिए और उन्हें बद्ध नहीं समझना चाहिए। ये हमारे को एक प्रभुपाद जी निम्रता से दूसरे प्रचार में लगे हुए भक्तों का आदर करने का संकेत दे रहे हैं। जो भगवान के नाम के प्रचार में, भगवान की लीला के प्रचार में लगे हुए हैं उनका बहुत आदर करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु की कृपा के बगैर कोई प्रचार कर नहीं सकता, लोगों के हृदय में परिवर्तन कर नहीं सकता। अगर आप लोगों को हरे कृष्णा जपाने में समर्थ हैं तो इसका मतलब महाप्रभु की कृपा है, और जिसके ऊपर महाप्रभु की कृपा है वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, तब दूसरे को शुद्ध भगवान की भक्ति करा सकता है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं है यहां, तो ये उसको आदर करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध की परिभाषा बता रहे हैं भगवद गीता से कि कैसे बन सकते हैं हम, माम च यो विचारेण भक्ति योगे न सेवते स गुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है, अनन्य भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है, वो तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर हो जाता है। इसलिए हमने पहले कहा कि कौन मानेगा, जो तीनों गुणों से ऊपर होगा वही मानेगा, दूसरा नहीं मान सकता। तीनों गुणों से ऊपर होने का साधन क्या है, भगवान की अनन्य भक्ति। तो हम कृष्ण भावना में सभी भक्ति के कार्य में लगे हुए हैं। हमें अपनी तरफ से तो हमेशा समझना चाहिए मैं पतित हूं, लेकिन हम जिस कार्य में लगे हुए हूं वो पति तपावन है, इसलिए हम पतित हैं तो भी हम पावन हो जाएंगे, और हमारे माध्यम से वो कार्य कोई भी ले सकता है और कभी भी कोई का चमत्कार करा सकता है। इसलिए हमेशा भगवान के हाथों में निमित्त मात्र भव सवय साचरण, हमको निमित्त मात्र बन जाना चाहिए, श्रेय भगवान को देना चाहिए कोई भी कार्य हमारे साथ हो तो। नित्य सिद्ध कहते हैं जो व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों को पार कर जाता है वो ब्रह्म पद पर अवस्थित माना जाता है। नित्य सिद्धों का भी वही पद होता है, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्म स्तर के ऊपर है, जो तीनों गुणों से परे है, वो नित्य सिद्ध के स्तर के ऊपर है। साधन करके पहुंचे या ऊपर से आया है तो पहले से ही सिद्ध है। नित्य सिद्ध न केवल ब्रह्म पद पर रहता है अपितु उस पद पर कार्य भी करता है। ये है दोनों में अंतर। ज्ञानी ब्रह्म पद पे जाता है तो वहां चुप हो जाता है, भक्त ब्रह्म पद में जाता है तो प्रचार में लग जाता है, ब्रह्म पद के ऊपर पहुंचने के बाद कार्य में लग जाता है। तो वो कार्य जो ब्रह्म पद का कार्य है उसमें लग जाता है। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के संज्ञों के नित्य सिद्ध स्वीकार कर ले तो भी वो आसानी से भगवत धाम वापस जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु को पहले भगवान मानने वाले भी बहुत कम है। एक और बहुत अच्छा भजन देवकी नंदन ठाकुर ने गाया है, इसी भाव से मैं 2 मिनट इसका शब्द उच्चारण करता हूं। ये सब हमको ऐसे करना चाहिए। वृंदावन वासी जत वैष्णव गण, जितने भी वृंदावन के वैष्णव गण है, वृंदावन में वैष्णव गण कौन होंगे जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शरण लिए हुए प्रेमी होंगे। प्रार्थमे वंदना प्रथम वंदना करी सबार चरण, पहले मैं उन सबके चरणों में वंदना करता हूं। फिर कहते हैं नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गण, भूमि ते पड़िया वंदाऊ सबार चरण। और जगन्नाथपुरी में जितने महाप्रभु के पार्षद है धरती के ऊपर दंडवत करके उनके चरणों का मैं शरण लेता हूं। फिर नवदीप वासी जत महाप्रभुर भक्त सबार चरण वंदाऊ हया अनुका अनुरक्ता। बड़ी उदारता बड़ी प्रेम के साथ नवदीप के जितने महाप्रभु के पार्षद है उनको मैं प्रणाम करता हूं। और फिर कहते हैं जे जे देश है, इसका मतलब है कि भविष्यवाणी है, ये तो प्रभुपाद के बाद जे जे देश हो जाएगा। कौन कौन से मूल देश में, हाँ अफ्रीका में या अमेरिका, कौन से देश में भी जे जे देश है, जे देशे वैसे गौरांगेर गण। जहां भी गौरंगा महाप्रभु के पार्षद किसी भी देश में है, ऊर्ध बाहु करी बंदाऊ सबार चरण, ऊपर हाथ करके सबके चरणों की मैं वंदना करता हूं। क्यों करते हो, उनमें क्या सामर्थ है। हया छे न है बे न प्रभुर जत दास सबार चरण वंदो दंते करी ग्रास। जो भी भगवान के भक्त है उनको घास मुंह में डाल के निम्रता से उनका प्रणाम क्या कर सकते हैं। ब्रह्मांड तारीते शक्ति धरे जने जने, उनमें इतनी शक्ति है कि एक पूरे ब्रह्मांड को तार सकते, ये इतने शक्तिशाली हैं। ये पूरा देखो, इस पूरे भूमंडल के ऊपर कृष्ण भावना की स्थापना करके सबके लिए जहाज बना दिया चैतन्य शिला प्रभुपाद ने, इस हरेक इस्कान का जो इसके ऊपर चढ़ रहा हो तो पार हो जाएगा, चाहे सोया हो तो भी नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, ये कितना बड़ा जहाज बनाया है, ये तो पूरा ब्रह्मांड को जगाने का है कि नहीं है। मैं सोए हुए भी होते हैं तो जहाज से फिर किसी को थोड़ी नीचे कोई फेंकता है, चढ़ गया तो चढ़ गया, नाचता रहे या सोता रहे फिर भी पहुंच जाएगा। कहते हैं ब्रह्मांड तारी ते शक्ति धरे, ये ब्रह्मांड एक पूरे को तारने की शक्ति करे, जने जने ये वेद पुराण गण गाए जावा सुने जीवा सुने, ये तो वेद पुराण कहते हैं कि इतने शक्तिशाली हैं। और कैसे हैं, वंदना करिते मुई कत शक्ति धरी तुमा बुद्धि दोष मुई दंभ मात्र करी। ये पति तपावन है, मैं तो मेरी बुद्धि में तो दंभ है, मैं उनको समझ नहीं पाता हूं, तथापि फिर भी मैं उनका शरण लेता हूं। तथापि मुकेर भाग्य मनेर उलास दोष खमीनो अधमे कर निज दास। हमारे दोषों को मत देखो, हमारे को अपना सेवक बना लो, ये प्रभुपाद को प्रार्थना करनी चाहिए। सर्ववांचा सिद्ध है यम बंध छूटे, आपकी इच्छाएं सब पूरी हो जाएंगी, इच्छा होनी चाहिए कृष्ण के प्रेम की, ये सबसे बड़ी इच्छा है, और यम के बंधन को छूट जाएगा। जगत दुर्लभ हया प्रेम धन लूटे, जगत में जो दुर्लभ है कृष्ण प्रेम, उसका धन मुफ्त में मिल जाएगा। मनेर वासना पूर्ण अचिरेत है देव कई नंदन दास ए लोभ कहे। हमारी तो यही है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। तो यहां जितने भक्त हुए हैं या होंगे उन सबको प्रार्थना कर रहा है, भविष्य में जो भक्त होने वाले हैं। तो यहां वाणी को विराम देते हैं। आज के श्लोक से राजा भक्तों का परिचय पूछ रहा है, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये जो महाप्रभु के पार्षद थे या जो अब महाप्रभु के अनुयायी कृष्ण भावना अमृत का प्रचार कर रहे हैं, इन सबको नित्य सिद्ध समझ के उनका आदर करना चाहिए। भगवान महाचेतना महाप्रभु की कृपा के बगैर कोई भी किसी को हरे कृष्णा नहीं जपा सकता। आप देखो बड़े बड़े कलाकार अच्छे गाने वाले हरे कृष्णा मंत्र भी गाएंगे तो कोई पीछे नहीं गाएगा। आपने देखा है बड़े बड़े पंडालों के अंदर लाखों रुपये लोग खर्च करते हैं, बड़े कलाकार को बुलाते हैं, अरे कता नहीं कैसे गाता है लेकिन कोई नहीं गाता है। और हमारा ये कोई ओडिशा का भगत हो, कोई बंगाल का भगत हो, जिसको हिंदी भी नहीं, हरे कृष्ण सब बोलेगा, हरे कृष्ण सब नाचने लग जाते। ये देखा है अंतर दोनों में, नहीं देखा है? वो सबको जपाते हैं तो उनमें बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो ये महाप्रभु की शक्ति के बगैर ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी किसी को जपा सकता है। और ये भैया अब रशियन भक्त जपते हैं तो पूरा वृंदावन में लोग जो जाते हैं मंदिरों के बाहर खड़े हो जाते हैं, वो जब कीर्तन करते हैं तो इतने लोग इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? तो महाप्रभु की कृपा के बगैर ये नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले तो वैष्णव का आदर करना चाहिए, जो मंदिरों में भक्त हैं प्रचार कर रहे हैं उनके प्रति आदर, दोष नहीं देखना चाहिए। दोष जरूर हो भी सकते हैं लेकिन देखना हमको नहीं चाहिए, हमको गुणग्रही होना चाहिए, दोष देखना हमारा काम नहीं है। दोष देखना उनके ऊपर जो जिसके अधीन वो काम करता है उसको उसके दोष सुधारने के लिए देखने का अधिकार है, हमको दोष देख के उसको नीचे खींचने का अधिकार नहीं है। किसको दोष देखने का अधिकार है? भाई पिता को अपने बच्चे में दोष देखने का अधिकार है। दोष वो देखे जो दोष का निवारण करने की सामर्थ्य रखता हो, शक्ति रखता हो, नहीं तो केवल दोष देख के किसी को हीन भाव में लाने से कोई लाभ नहीं होगा, ना हमारा होगा ना उसका होगा। अगर आप किसी में दोष देखते हो तो उसके निवारण करने का आप में सामर्थ्य होना चाहिए, और वो आपकी बात मानने के लिए भी तैयार होना चाहिए, तब दोष देखो, नहीं तो आंखें बंद करके अच्छाई को ही देखो। प्रभुपाद अगर दोष देखते तो ये स्कान बनता क्या? जो प्रभुपाद के पास आए थे क्या वो ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, कोई शुद्ध स्नान करके आया करते थे? अरे भूत थे। हाँ सर, ऐसे न बालों का पता, न स्नान का पता, न कपड़े का पता, न खाने का पता, कैसे थे भगवान जाने, लेकिन प्रभुपाद ने उनमें एक चीज देखी कि इनको नाम जपने में, कीर्तन करने में, साज बजाने में थोड़ा सा रुचि है, तो हरे कृष्णा जपाया और इतने महात्मा हो गए। उनके अंदर से महात्मा कितने निकल आए। तो ऐसे दोष देखने से थोड़ी ऐसे हो सकता है। तो यहां जो भी आए उसमें दोष नहीं थे, भाई कम से कम इस मंदिर दरवाजे के अंदर आया है तो परमात्मा ने उसको प्रेरणा दी है, इसलिए आया है, इसके अंदर भक्ति का बीज है, इसको अच्छी तरह से हवा दो, इतनी हवा दो कि उसके अवगुण सब उसकी भक्ति की आग से जल के भस्म हो जाए और शुद्ध हो जाए वो। तो सबके अंदर दोष न मत देखो, गुण ग्रही बनो, सबका आदर करो, आज भी गोरंगा महाप्रभु के पार्षद धरती के ऊपर हैं और सदा रहेंगे। और प्रभुपाद जी ने तो हमको बनने का साधन बता दिया कि 24 घंटे काम में लगे रहो, लोगों को हरे कृष्णा जपाते रहो तो तुम भी सिद्ध हो जाओगे, कोई मुश्किल नहीं सिद्ध होना। पहले चेतना महाप्रभु की कृपा के बगैर कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता, इसलिए चेतना महाप्रभु के विषय में हमको अधिक से अधिक सुनना, समझना और जानने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसकी कृपा से ही कृष्ण प्रेम मिलता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, चेतन चरितमृत की। समय थोड़ा हम लेट आए और हम कथा भी थोड़ी लंबी हो गई, तो क्षमा प्रार्थनी है। किसी का कोई टिप्पणी है, प्रश्न है? कुछ प्रश्न नहीं है तो बहुत अच्छा, आप सब प्रश्न है। गौरंगे राजा का